नमस्कार स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मनोज जोशी। मनोज जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लंबोरिया ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई, भारत के लिए पदक पक्के। विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज में पायल नाग ने जीता स्वर्ण पदक। हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुदुचेरी, केरल, हिमाचल, तमिलनाडु और दिल्ली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने अपने मुकाबले जीते। और चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला जारी, लखनऊ ने हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। चर्चा की शुरुआत करते हैं बॉक्सिंग से। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लंबोरिया ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ महिला वर्ग में सभी मुक्केबाजों का पदक पक्का हो गया है। मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम वर्ग में युका सादमात्सु को 5-0 से हराया। वहीं जैस्मिन ने 57 किलो वर्ग में जीव चेन को 5-0 से मात दी। वहीं पुरुष वर्ग में लोकेश ने कोरिया के गिचाई किम को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। बेहतरीन प्रदर्शन रहा है बॉक्सिंग में भारत का। अगर हम आकाश हर्ष चौधरी ने भी जगह बनाई और पुरुष वर्ग में 6 मुक्केबाजों ने जगह बना ली है।
जी हाँ, बिल्कुल कंसिस्टेंटली भारतीय मुक्केबाज जो है अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा संकेत है। आपने मीनाक्षी का जिक्र किया, जैस्मिन ने जिक का जिक्र किया, जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहीं विश्वनाथ सुरेश का भी अगर हम बात करें तो उन्होंने भी वर्ल्ड चैंपियन को हराया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक ऐसा बॉक्सर जो यूथ वर्ल्ड चैंपियन रह चुका हो 2022 में, और उसके अलावा इसने जो फेडरेशन कप हो और एलीट नेशनल चैंपियनशिप हो, दोनों में गोल्ड मेडल जीते, वो अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। तो जूनियर हो जूनियर खिलाड़ी जब सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं तो उनका मनोबल भी बढ़ता है, उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और अपना शानदार प्रदर्शन करने के लिए हमेशा वो कटिबद्ध रहते हैं।
जी आज तो सेमीफाइनल में जगह बना ली है, ब्रॉन्ज सुनिश्चित हो गया, लेकिन क्या कुछ अलग करने की जरूरत होगी इन खिलाड़ियों को ताकि वो स्वर्ण पदक जीत सके इस टूर्नामेंट में?
देखिए, अब यही है कि अपना आप जो है अपोजिशन जो है अपोनेंट कौन है आपका और उसके खिलाफ किस तरह की आपको रणनीति बनानी है, ये स्पोर्ट्स स्टाफ का काम है, कोच का काम है, और कोच उन्हें जो रणनीति बताएंगे कि क्या कहाँ वो फंसते हैं, कौन यहाँ पर साउथ पा है या कौन किस तरह से कदमों का इस्तेमाल करना है या आपको ऊपर से पंचेस पर ज़्यादा अपने आप को फोकस करना है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है अपोजिशन पर। और क्योंकि जो विश्वनाथ सुरेश हैं खास तौर पर, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन को हराया और अब जॉर्डन के खिलाड़ी उनके सामने हैं तो काफ़ी उनसे उम्मीदें बढ़ गई हैं।
जी चर्चा कर लेते हैं तीरंदाजी पर। बैंकॉक में विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज में कल भारत की उभरती पैरा आर्चर पायल नाग ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के कंपाउंड ओपन व्यक्तिगत वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में पायल ने मौजूदा विश्व चैंपियन शीतल देवी को 139 के मुकाबले 136 से शिकस्त दी। पेश है एक रिपोर्ट।
फाइनल मुकाबले के 2 राउंड के बाद दोनों आर्चर 54 अंकों की बराबरी पर थी। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, पायल ने सधी हुई रणनीति के साथ मुकाबले में निर्णायक बढ़त बनाते हुए यादगार जीत दर्ज की। 19 वर्षीय शीतल ने क्वालिफिकेशन राउंड में 698 के शानदार स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रही। पायल ने 678 के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल में शीतल ने नूर शाहिदा अलीम को 147-142 से, जबकि पायल ने मोवा को 144-140 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। पुरुषों के कंपाउंड ओपन फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन टोमन कुमार ने ऑस्ट्रेलिया के जोनाथन मिलने को 146-142 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। रिकर्व वर्ग में भावना ने थाईलैंड की पथराफोन पट्टावाओ पर 6-0 की शानदार जीत के साथ महिलाओं का व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों के रिकर्व वर्ग में पैरालंपिक चैंपियन हरविंदर सिंह ने रजत पदक जीता। भारत 7 स्वर्ण, 3 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ शीर्ष पर रहा। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
करिश्मा ही कर दिखाया है इन्होंने। छत्तीसगढ़ के गांव से आती है और हाथ पैर बिजली शॉक में उनका चला गया था, और अब जो ट्रेनिंग भी वो करती है, पैर जो पायल और अपने कंधे और जबड़े के उस पे उसके ट्रेनिंग को जो करती है उसके थ्रू वो तीरंदाजी करती है, तो काफी ऐतिहासिक रहा भारत के लिए।
बिल्कुल, आप देखिए ना, बैंकॉक में प्रतियोगिता है और वहां पर हर किसी की जुबान पर शीतल का नाम है, लेकिन पायल आती है वो शीतल को हराती है और वो भी साबित करती है कि जो उन्होंने नेशनल चैंपियनशिप में उनको हराया था वो कोई तुक्का नहीं था। देखिए, एक बड़े मंच पर भी वो हराने का मादा रखती हैं, तो ये एक आर्मलेस जो आर्चर हैं और उनको दूसरी आर्मलेस आर्चर हराती हैं, और इतना ही नहीं ये उनकी आइडियल भी रही हैं। शीतल को देखते देखते ही उन्होंने अपनी कला को चमकाया है और उन्हीं को जाकर हराना कितना गुदगुदाने वाला पहलू है।
और श्रोताओं, आपको बता दें कि पायल ने व्यक्तिगत स्पर्धा में तो स्वर्ण पदक जीता ही जीता है, लेकिन शीतल देवी के साथ भी उन्होंने टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। चर्चा कर लेते हैं हॉकी पर। झारखंड के रांची में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कल पुदुचेरी, केरल, हिमाचल, हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु और दिल्ली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने अपने मुकाबले जीते। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
डिवीजन सी के पूल बी में ले पुदुचेरी हॉकी ने हॉकी राजस्थान के खिलाफ 10-0 से शानदार जीत दर्ज की। ले पुदुचेरी हॉकी के लिए गोल ज्ञानेश्वरी गिरा का, चंचल हरिदर्शनी थारिणी और कप्तान कनकश्री ने गोल किए। डिवीजन सी के पूल ए के मैच में केरलम हॉकी ने तेलंगाना हॉकी को 4-1 से हराया। केरल हॉकी के लिए परमेश्वरी पिना पोथुला, निरंजना प्रदीप और कप्तान रेशमा समद ने गोल दागे। प्रतियोगिता में गोवा हॉकी पूल ए में और हॉकी जम्मू कश्मीर पूल बी में शीर्ष पर हैं। डिवीजन बी के पूल बी में हॉकी चंडीगढ़ और हॉकी उत्तराखंड के बीच मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। हॉकी चंडीगढ़ के लिए अन्नू ने 2 गोल किए, जबकि हॉकी उत्तराखंड के लिए कप्तान मीनाक्षी और गुनगुन कटारिया ने गोल दागे। एक अन्य मुकाबले में हॉकी हिमाचल ने हॉकी कर्नाटक को 3-1 से हराया। हॉकी यूनिट ऑफ तमिलनाडु ने अपने पूल ए डिवीजन बी मैच में असम हॉकी के खिलाफ 5-1 से शानदार जीत हासिल की। जोनिशा डेफनी एमजे ने हैट्रिक गोल किया। वहीं दिल्ली हॉकी ने दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव हॉकी को 2-1 से हराया। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
करते हैं स्क्वाश पर। मिस्र के एलगोना में खेले जा रहे प्रोफेशनल स्क्वाश एसोसिएशन प्लैटिनम इवेंट में अभय सिंह ने मिस्र के एली अबू एलिनिन को 9-11, 11-8, 3-11, 11-4, 11-8 से हराया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
पहला गेम 9-11 से हारने के बाद अभय सिंह ने दूसरे गेम में जोरदार वापसी करते हुए अपनी लय पकड़ी और 11-8 से जीत के साथ स्कोर बराबर कर दिया। एलिनन ने तीसरे गेम में दबदबा बनाते हुए 11-3 से गेम को अपने नाम कर लिया। चौथे गेम को अभय ने 11-4 से जीतकर मुकाबले को रोमांचक मोड़ पर पहुंचा दिया। आखिरी गेम में 7-3 से पिछड़ने के बाद अभय ने बेजोड़ वापसी करते हुए 11-8 से मुकाबले को जीत लिया। अभय का अगला मुकाबला 6वीं वरीयता प्राप्त और विश्व के नंबर 7 खिलाड़ी यूसुफ इब्राहिम से होगा। इस बीच अनाहत सिंह को शीर्ष खिलाड़ी हानिया एल हमामी से हार का सामना करना पड़ा। अनाहत ने अपने अनोखे अटैकिंग स्ट्रोक प्ले से शुरुआत में ही 7-5 की बढ़त बना ली। हालांकि शीर्ष वरीयता प्राप्त एल हमामी ने मुकाबले में वापसी करते हुए पहला सेट 11-8 से जीता और दूसरे सेट में 11-5 के स्कोर से आगे बढ़ी। तीसरे गेम में 4-0 से पिछड़ने के बाद अनाहत ने शानदार खेल दिखाते हुए अगले 10 में से 9 अंक जीते। चौथे गेम में हमामी ने मजबूती से खेलते हुए 49 मिनट के खेल के बाद 11-8, 11-5, 9-11, 11-8 से कड़ा मुकाबला जीत लिया। अंजुम आलम, स्पोर्ट्स स्कैन।
उभरते हुए खिलाड़ी हैं अभय, और क्या शानदार प्रदर्शन किया। पहला गेम हारने के बाद दूसरा जीता, फिर तीसरा हारे, फिर चौथा जीता, डिसाइडर पे पहुंचाया और पांचवा मुकाबले को अपने नाम किया।
जी हाँ, बिल्कुल, अच्छी खासी रणनीति बनाकर ये खेलते हैं और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप देखिए, वर्ल्ड कप हो, एशियन गेम्स हो, हर जगह इनके नाम गोल्ड हैं और एशियन चैंपियनशिप में 5 गोल्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका नाम उतना हाईलाइट अगर नहीं हो पाया है तो उसकी बड़ी वजह यह है क्योंकि इनकी जितनी बड़ी उपलब्धियां हैं वो सारी या तो मिक्स्ड इवेंट में हैं या डबल्स में हैं या टीम इवेंट में हैं। इंडिविजुअल में ना होने की वजह से ये उतना हाईलाइट नहीं हो पाए, लेकिन जब ये इंडिविजुअल में उतरते हैं तो वहां भी अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़ देते हैं।
और अनाहत सिंह से भी उम्मीदें की जा रही थी इंडियन ओपन जीतने के बाद, जो नाम कमाया है उन्होंने, लेकिन लास्ट में वो जीत ना सकी।
हाँ देखिए, अनाहत बहुत प्रतिभाशाली हैं, होता है इस तरह से बड़े मंच पर कई बार आप चूक जाते हैं, और लेकिन वो भी एक आपके लिए लर्निंग एक्सपीरियंस जरूर होता है
जी। बात कर लेते हैं फुटबॉल पर। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज स्पोर्टिंग दिल्ली ने केरला ब्लास्टर्स को 2-0 से हराया। वहीं मुंबई सिटी और ओडिशा एफसी का मुकाबला जारी है, स्कोर अभी 0-0 पर है और मुंबई 15 अंक के साथ शीर्ष पर और वहीं मोहन बगान 14 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है मुंबई का, हालांकि मोहन बगान पिछले साल चैंपियन रही थी, वैसा ही प्रदर्शन इस बार भी वो कर रही है।
जी हाँ बिल्कुल, 6 मैच और 4 जीत 2 ड्रॉ, और आज अगर ये मुकाबला जीत जाते हैं ओडिशा से तो ये एक तरह से बहुत बड़ी उनकी कामयाबी होगी और जीतना भी चाहिए उन्हें। और थोड़ी सी रणनीति में बदलाव करते हैं, कभी वो 4-2-1-3-1 से खेलते हैं, कभी 4-3-3 से खेलते हैं, तो बस अब यही है कि यहां ये मैं मुकाबला जीते उतना ही टीम के लिए अच्छा रहेगा और मुंबई सिटी के फैंस के लिए बहुत राहत भरी खबर होगी
जी। बात कर लेते हैं शतरंज पर। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदन ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट के 6ठे दौर में हिकारू नाकामोरा से ड्रॉ खेला, जबकि जावोकिर सिंदारोव ने जीत का क्रम जारी रखते हुए चीन के वेई यी को हराया। 6 मुकाबलों में से 5 जीत कर सिंदारोव 5-5 अंक के साथ शीर्ष पर हैं और ये टूर्नामेंट के इतिहास का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। बात कर लेते हैं क्रिकेट पर। आईपीएल T20 क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 14 ओवर में 151 रन बना लिए हैं, उनके 2 विकेट ही अभी गिरे हैं और अच्छा प्रदर्शन रहा है आरसीबी का लगातार। देवदत्त पड्डीकल आज भी 50 रन बनाए, पहले मुकाबले में भी शानदार बल्लेबाजी की थी और विराट कोहली का भी उन्होंने भी अच्छी शुरुआत देकर गए हैं बैंगलोर को।
जी हाँ बिल्कुल, अगर आप अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं तो उसके मायने और भी ज्यादा हो जाते हैं। जैसे पड्डीकल का आपने जिक्र किया, उन्होंने केवल 28 गेंदों पर ही 50 रन पूरे किए, 2 छक्के भी लगाए। यहां पर विराट कोहली को सब देखने आए थे, भाई ठीक है 18 गेंदों पर 28 रन जरूर उन्होंने बनाए, शिवम दुबे ने उन्हें जीवनदान भी दिया, लेकिन उसके बाद अपनी गलती को बहुत जल्दी सुधार भी लिया क्योंकि हार्ड लेंथ गेंद पर वो जिस तरह से लॉन्ग ऑन पर लपके गए, पुल नहीं कर पाए, लेकिन गेंद काफी ऊंची चली गई तो पहले 3 ओवर में कोई बाउंड्री नहीं गई थी, तो ये कुछ पहलू जरूर रहे। लेकिन फिल साल्ट ने 46 रन की पारी खेली, अच्छा संभाला उन्होंने शुरुआती दौर में।
क्या कारण है लगातार चेन्नई सुपर किंग्स जो जिसको हम कमबैक सुपर किंग्स के नाम से जानते थे, एक लेगेसी रही है, एमएस धोनी डगआउट में है, उनका स्ट्रेच जो रणनीति बनाते हैं और टीम के साथ ऋतुराज को शेयर करते ही होंगे, लेकिन मैदान में नहीं होने के कारण एमएसडी का इतना बड़ा प्रभाव पड़ना ये आश्चर्यजनक।
देखिए कोई कितना भी बड़ा कोच हो, कोई कितना भी बड़ा सीनियर प्लेयर हो, परफॉर्मेंस तो प्लेयर्स को ही करना है
जी।
अब वो परफॉर्मेंस में अगर आप उनके नाम देखेंगे तो नाम अपने आप में बहुत बड़े बड़े नाम है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया है। अगर आप अभी क्योंकि शुरुआती दौर है, अभी इतनी जल्दी हम निष्कर्ष तो नहीं निकाल सकते, लेकिन झटका जरूर है क्योंकि आपके जो प्लेयर है स्टार प्लेयर वो चल नहीं पा रहे हैं
जी। और वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स ने आज सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हराया। हैदराबाद के 157 रन के लक्ष्य को लखनऊ ने एक गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। कप्तान ऋषभ पंत ने नाबाद 68 रन की पारी खेली। मोहम्मद शमी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शमी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, 4 ओवर में 2.2 के इकोनॉमी रेट से सिर्फ 9 रन ही दिया है और कहीं ना कहीं वो सेलेक्टर्स को कह रहे हैं रणजी में अच्छा प्रदर्शन किया बंगाल के लिए और अब आईपीएल में बहुत ही शानदार प्रदर्शन।
बहुत शानदार प्रदर्शन मैं तो कहूंगा। स्लोअर वन उन्होंने जो डेवलप की है अपनी बड़ी काबिले तारीफ है। इसी स्लोअर वन पर उन्होंने ट्रेविस हेड का विकेट लिया, थोड़ी शॉर्ट गेंद थी, गति कम थी और बॉटम हैंड से जिस तरह से वो खेले और मिड ऑफ पर लपके गए। उस तरह अभिषेक शर्मा को देखें आप, एक एज लगा था, फुलर लेंथ गेंद थी परिवर्तन के तौर पर, उस पर उन्होंने विकेट चटकाया, तो अपने आप में काबिले तारीफ है। बस ये है कि शुरुआती दौर में जो 4 विकेट जल्दी जल्दी खो दिए थे और पावर प्ले में अगर कोई टीम 22 रन बनाती है 3 विकेट खो देती है और 26 पर 4th विकेट खो देती है तो फिर वहां से संभल पाना किसी भी टीम के लिए मुश्किल होता है और एसआरएच के लिए यही कुछ हुआ
जी। और वहीं कल हुए मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस को 6 रन से हराया। अंतिम ओवर अच्छा किया तुषार देशपांडे की अगर बात करें तो अब 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी उनके पास, पहले चेन्नई के लिए गेंदबाजी किया करते थे, लेकिन 9 रन 11 रन को डिफेंड करना बड़ी बात है।
बड़ी बात है, यॉर्कर करने लगे हैं, स्पीड उनकी बढ़ गई है, तो ये अपने आप में एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। लेकिन यही है रवि विश्नोई मैं समझता हूँ दोनों टीमों के बीच का बहुत बड़ा अंतर साबित हुए और जिस तरह उन्होंने साई सुदर्शन को, ग्लेन फिलिप्स को, सुंदर को, राहुल तेवतिया के जो विकेट चटकाए, 2 विकेट तो उनको गुगली पर हासिल हुए
जी। और उधर कल शाम 7 बजे कोलकाता और पंजाब आमने सामने होंगे। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 15वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 151 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं अब समय हो चला आपसे विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। मनोज जी आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद।
और श्रोताओं इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।